பிரபன்னபாரிஜாத்தாய தோத்ருவேத்ரே கோபாலாய ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுவே நமஃ. வசுதேவ சுதம் தேவம் கனசசானூர்மர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். வன்ஷேபூஷிதகரான்னவநீதராபாத் சீதாம்பராதருணதம் பஃலாதருக்ஷாத் பூர்ணேந்து சுந்தரமுகாதருவிந்தநேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே. ஹரி ஓம் நமோ பரமாத்மனே நம: ஸ்ரீ கோவிந்தாய நமோ நம: ஸ்ரீ குரு சரண கமலே தேவ நம: தேவ நமஸ்கரவே தேவ நமோ நம:
நாராயண நாராயண.
ஆஜ ஆப் லோகோ கே சமக்ஷ ஜீவ கி கதி கே விஷய மே கஹனே கி பாத் சோச்சி ஹை. சுச்சிந்தித்தோக்தம் சுவிசாரிய யத் கிருதம் சுதீர்க்க காலே விநியாதி விக்ரியா. விசார பூர்வக காம் கியா ஜாய தோ உஸ்கோ பீச்சே பஸ்தாதாப் கர்னா நஹி படதா. தோ ஜோ குச் ஹமே கர்னா ஹை உஸ்கே பீச்சே மே பஹலே சோச்னா சாஹியே. தோ ஏ காம் கர்னே மே தோ அலக் அலக் கர்த்தவ்ய ஹோதே ஹை. परंतु आज उस काम की चर्चा करते हैं जो सबको करना है, अर्थात हमें यहां से जाना पड़ेगा, तो हमारी क्या गति हो इस विषय में जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है. सांसारिक काम करें न करें, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, परंतु शरीर छोड़कर तो जाना पड़ता ही है. तो उस विषय में उस आप लोगों की सेवा में आज कहूं ऐसा आदेश हुआ है. भगवद गीता के आठवें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने सात प्रश्न किए थे, उनमें सातवां प्रश्न था अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं. उसके उत्तर में भगवान ने कहा, अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय. अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ करके जाता है वह प्राणी निश्चय ही मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं. तो फिर बात आती है, यह कायदा नियम आपके लिए ही है क्या? तो अगाड़ी का जो छठा श्लोक होता है आठवें अध्याय का, उसमें कहते हैं कि नहीं, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्रित्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद भाव भावित. अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जीव जाता है तो उसी उसी भाव को वो प्राप्त हो जाता है, ये नियम है. प्राप्त कैसे होता है? सदा उस भाव को भावित होता होता अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है. तो प्राणियों की कितनी गति होती है इसके विषय में देखा जाए, एक मानी जाती है मुक्ति, जिसको कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, ऐसे अनेक नाम हैं. जो सर्वोपरि स्थिति है उससे बढ़कर कोई ऊंची स्थिति नहीं, ऐसी वो मुक्ति कहलाती। उसके अनेक भेद माने, उनमें दो मुख्य है विभाग, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जीते हुए मुक्त हो जाना, अभी वर्तमान अवस्था में प्राणों के रहते हुए हम मुक्त हो जाए, उस स्थिति का नाम जीवन मुक्ति। और विदेह मुक्ति वो कहलाती है जो मरने के बाद हुआ करती है। उस मुक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं जो तत्वज्ञान होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी तीर से मुक्ति मानी गई है जिसमें गति होती है। उस मुक्ति के कहीं चार और कहीं पांच भेद बताए हैं। वो सगुण परक भक्तों की मुक्ति मानी गई है। भगवान को निर्गुण भी मानते हैं, सगुण भी मानते हैं। तो निर्गुण तत्व को मानने वालों की ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति बताई। सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले वे भगवान के धाम में जाते हैं, उनकी मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ऐसे चार तरह की मानी गई। भगवान के परम धाम में जाकर के रहना ये सालोक्य मुक्ति है। भगवान के समीप में जाकर के रहना ये सामीप्य मुक्ति है। और भगवान के समान ही शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण कर वैसे ही रूप से साथ में रहना वो सारूप्य मुक्ति है। और परमात्मा में ही अपने को मिला देना उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इन मुक्तियों में से जीव जिसको चाहता है उसको वही मुक्ति मिलती है। भगवान के साथ वात्सल्य प्रेम रखता है तो उसको सालोक्य और सख्य भाव रखता है उसको सामीप्य, और माधुर्य भाव वालों को भी सामीप्य, और मित्र भाव वालों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। और ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के ये भेद बताए। अब उसकी प्राप्ति कैसे होती है कि जब तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मा का असली अपना बोध हो जाए, जिस क्षण में वो तत्व ज्ञान हुआ उसी क्षण यही मुक्ति हो जाती है। और वही अगर अंतकाल में ज्ञान होता है तो उसी क्षण प्राण छूटते मुक्ति हो जाती है। और जीवन मुक्तों के लिए भी ऐसा कहा है कि यहां बोध प्राप्त हो गया, मुक्त हो गए, जब तक वो शरीर है तब तक वे जीवन मुक्त कहलाते हैं, और शरीर छूटने पर वे ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे विदेह मुक्त हैं। भगवान के धाम में जाने वालों के लिए वे चार मुक्तियां बताई है। तो अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए मरते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। ये इस श्लोक में आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में बात बताई। ये मुक्ति का विषय अभी इतना ही कह करके छोड़ देता हूं, फिर वक्त आने पर दोबारा अगर काम पड़ा तो कहूंगा। अब तीन गतियां बताई गई, जीव की गति मुख्य तीन होती है, एक ऊर्ध्व गति, एक मध्य गति और एक अधोगति। ऊपर को जाना और बीच में रहना और नीचे को चले जाना, ये तीन गति मानी गई। उसका खास हेतु बताया गया अंत का चिंतन। प्राण छोड़ते समय जैसा जैसा चिंतन करते हैं उसी उसी के अनुसार हमारी गति होती है, और जहां हम जाकर के रहते हैं उन जन्मों में हमारे इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग होता है। जैसे आप हम मनुष्य बने, उससे पहले मरते समय मनुष्य की यादगिरी से मनुष्य बन गए, और पहले मानव जन्म में किए हुए कर्मों के फल के अनुसार, उन कर्मों के अनुसार फल रूप से हमें सुख और दुख मिलता है। फल भोग में कर्म मुख्य और अगाड़ी पुनर्जन्म में अंतिम चिंतन मुख्य है। अंतिम चिंतन में कारण कर्म होते हैं, गुण और कर्म दोनों ही माने। गुण का अर्थ है चित्त के भाव, शांत भाव है, क्रूर भाव है, जड़ता है, ऐसे अंतकरण के भाव, और अंतिम चिंतन, उसके अनुसार अगाड़ी पुनर्जन्म होता है। इस वास्ते 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित रहने वाले ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहने वाले मध्य लोकों में जाते हैं, और निंदनीय गुण तामस है, उस तमोगुण में स्थित रहने वाले अधोगति को जाते हैं। उनमें ऊर्ध्व गति में जाने वालों के दो भेद है, एक ऊपर के लोगों को जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, पीछे लौट करके नहीं आते, और दूसरे ऊपर लोग स्वर्ग आदि सुख भोग भूमि है, वहां जाकर अपने पुण्यों के अनुसार सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वहां से पीछे लौट करके मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ऐसे ही अधोगति के भी दो भेद माने हैं, एक 84 लक्ष योनि, सांप बिच्छू शूकर कूकर आदि की योनियों में जाना, ये भी अधोगति है, और दूसरा नरक, बड़ा भारी यातनामय कष्ट का स्थान है, वहां चले जाना, ये दूसरी अधोगति है, और मध्य गति मर करके मनुष्य से पीछा मनुष्य बन जाना, ये मध्य गति है। ऐसे पांच गतियां हो गई, ऊपर को जाकर भगवान को प्राप्त हो जाना, पीछे न आना, और ऊपर जाकर सुख भोगों को भोग कर पीछे आना, और नीचे पशु पक्षी आदि योनियों में, वृक्ष धूप आदि योनियों में चले जाना, और फिर बार बार जन्म लेना, और नरकों में जाना, और नरकों के कष्ट पा करके फिर अनेक जन्मों में जाना, और मरकर पीछा मनुष्य जन्म जाना, ये पांच गति। अब विचार ये करना है कि मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे होता है, किस तरीके से होता है, अब इस पर थोड़ा सा विस्तार से विवेचन किया जाता है। जैसे हम अपना चित्र उतरवाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो ठीक तरह से बैठ जाते हैं ठीक ढंग से, और फोटोग्राफर कहता है ठीक बैठना अच्छी तरह से, और कोई अंग हिलने ना पावे, एक दो तीन कहते ही चित्र उतर जाएगा आपका, तीन शब्द कहते ही हम ठीक बैठ जाते हैं ऐसा। और यहां ही वो एक दो कहने लगा, इतने में एक माखी आकर बैठ जाती है यहां, तो भाई हिल जाएंगे तो फोटो बिगड़ जाएगा, ऐसा विचार करके यूं कर देना आग से उतर गया साहब, चित्र उतर गया, लाओ दिखाओ, कहते अभी तो लिया जाएगा, धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, फिर दिखाएंगे। तीसरे दिन लाकर देखा, दे लीजिए साहब आपका चित्र है, अरे यार ये कर ऐसे कर दिया, चित्र बिगाड़ दिया तुमने, कहता बाबू हमने नहीं बिगाड़ा, आपने ऐसे, मैं ऐसे क्यों करता, हाँ हाँ ठीक है भैया। वो उस समय यह आग्रह मक्षिका बैठ गई, इस वास्ते से उड़ाने के लिए कर दिया ऐसा, अब तो भाई दूसरा चित्र उतर आओ तो बिगड़ गया, उसमें तो 10-12 रुपए 15 रुपए जितनी उसकी फीस है जो कुछ कीमत है वो लगने पर फिर दूसरा उतर जाए। परंतु भाई अंतिम भाग में जब मृत्यु के समय जो आपका भाव होगा वो चित्र वैसा ही उतर जाएगा, फिर बदल नहीं सकोगे, उसके लिए सावधान रहो। उसमें सावधान पहले से ही रह जाते हैं, चित्र के खींचने के समय से पहले सावधान हो जाते हैं, अगर सावधान नहीं रहते हैं तो चित्र बिगड़ जाता है, तो उसका तो समय अभी आने वाला है, अभी हमें ऐसे हिले डुले तो पता नहीं, अभी तो देरी है उसमें, परंतु ये अंतकाल का समय इसका कुछ पता ही नहीं है, न जाने कब चित्र उतर जाए, अचानक मृत्यु हो जाती है। और अंतकाल में जो भीतर का चिंतन है वही चित्र उतर जाएगा। अभी श्लोक बोला ना, यंग यंग वापि स्मरण भावम यदत्यंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंतकाल में शरीर छोड़ता है वह उसी को ही प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते ये छठवां श्लोक है, उसके अगड़ी लिखते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में तू मेरा स्मरण कर, तो फिर कोई जोखिम नहीं रही, जीवन बीमा हो जाता है ना, तो फिर वो निश्चिंत रहता है, भाई मोटर है तो बीमा भी की हुई है, कोई बात नहीं, अब टूट जाए फूट जाए तो पैसे ले लेंगे वहां से। तो इस तरह से इस मानव जीवन का बीमा क्या है कि जैसे कल परसों बताया कि प्रभु के साथ में एकता, मैं भगवान का भगवान मेरे, ऐसी घनिष्ठता प्रभु के साथ में अपनापन की हो जाए, और इसके बाद हर समय भगवान का चिंतन होता रहे, उसे बीमा हो गया। भगवान के हम हो चुके, ये तो रुपये जमा कर दिए, और ये रोजाना का जो कुछ देने का है ना वो दे रहे हैं, हरदम भगवान का चिंतन। तो अंतकाल में जैसा चिंतन होता है वैसी गति होती है, और अंतकाल का पता नहीं कब आ जाए, तो सब समय में ही हमारा स्मरण है, भगवान का चिंतन है, तो कभी आ जाए हर्ज क्या है, अब कोई खतरा नहीं रहा, अब बीमा भी सुख, कभी मृत्यु आ जाए। इस वास्ते भगवान कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में मैं मेरा स्मरण कर, तो भगवान का स्मरण करते रहे, फिर निश्चिंतता और निर्भयता है। अब ये बात आती है भगवान का स्मरण करते हुए हम भगवान को प्राप्त होते हैं तो हम पशु पक्षी आदि की योनियों में कैसे जाते हैं? तो भाई उसमें भी अंतकाल का स्मरण कारण है, जो याद आ जाएगा उसी में हमें जाना पड़ेगा। जैसे हैं कई लोग कई चीजों को रखते हैं, पक्षियों को रखते हैं, कोई बंदर को रखते हैं, कोई कुत्ते को रखते हैं, बड़ा स्नेह से पालते हैं, पास में रखते हैं, और मृत्यु समय में वो याद आ जाएगा कुत्ता तो फिर मर करके बनना पड़ेगा कुत्ता। कहते वो कैसे बनता है? अभी बताया ना, जिस क्षण पिंड प्राण का वियोग होता है इस शरीर से, जब प्राण निकलते हैं तो उस समय सब अंगों से प्राण संकुचित होते हैं। प्राण जो हमारी वायु चलती है, इस प्राण के साथ पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन और बुद्धि, ये 12 इसके साथ रहते हैं और प्राण ये माने गए हैं 5। हृदय प्राण उदय अपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देश ज्ञान सर्व शरीर, ये 5 प्राण, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। अभी हमारे सामने ये दिखता है हाड़ मांस का, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म के भीतर कारण शरीर है। ये अभी जागृत अवस्था ये स्थूल शरीर की है, सपना आता है वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, और गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं रहता वो सुषुप्ति अवस्था हमारी मानी जाती है। अभी जागृत अवस्था में हम चलते फिरते हैं, ये काम स्थूल शरीर का, हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये काम सूक्ष्म शरीर का। और हमारा जो स्वभाव है, आदत है, प्रकृति पड़ी हुई है, वो है कारण शरीर का। स्थूल शरीर में क्रिया मुख्य है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन मुख्य है, कारण शरीर में स्थिरता मुख्य है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से वियुक्त होता है, तो भीतर प्रकृति जिसको स्वभाव आदत कहते हैं, वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के भीतर रहता है। और इंद्रियां और मन बुद्धि ये प्राणों के भीतर रहते हैं, और प्राण यहां से निकलता है तो पहले सब अंगों से प्राण संकुचित होते हैं, चलने फिरने की शक्ति, लेने देने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब संकुचित होकर यहां भीतर आती। हृदय में धड़कन देखते हैं और वो फिर प्राणों के द्वारा बाहर निकलता है, वायु के द्वारा, वायु उसमें मुख्य है, गति जितनी होती है वो सब वायु की है, तो वायु निकलता है। वो इन द्वारों से भी, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा और टट्टी पेशाब के द्वारा प्राण अंत में निकलता है। तो अधोगति में जाने वालों के प्राण नीचे के द्रवजों से निकलते हैं, ऊर्ध्वगति में जाने वालों के प्राण इन द्रवजों से निकलते हैं, और योगाभ्यास करके प्राणायाम करके जो प्राण छोड़ते हैं उनके लिए 10वां द्वार है, बड़ा शब्द होकर यहां से प्राण निकलते हैं। तो प्राण निकलने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति कैसे होती है? तो जैसे आपको बताया, कोई एक आदमी है और मर रहा है, कुत्ते में उसका रहा स्नेह, पास में वो रहा, अंत काल में वृत्ति उधर चली गई, तो ज्यों ही वृत्ति उधर गई और इधर से प्राण छूटे तो मन में कुत्ते की आकृति पकड़ी गई। जैसे कैमरे के प्लेट में सामने वाली आकृति पकड़ी जाती है, इस तरह से भीतर के मन में प्राण छूटते समय जो संकल्प आया वही आकृति पकड़ी गई और वो प्राणों के साथ में ऊपर बाहर निकली। अब वो शक्ति घूमती है तो किसमें पकड़ी जाएगी? तो भाई जिसके साथ संस्कार बने हुए हैं और वो जैसी मन की आकृति है वैसी आकृति सामने आती है उस कुत्ते में पकड़ी जाएगी। कुत्ते के वायु में श्वासों के द्वारा अथवा अन्न के द्वारा, खाद्य पदार्थ के द्वारा अथवा जल के द्वारा वो कुत्ते में प्रवेश होता है और फिर वहां से कुतिया में जाता है और वह गर्भ बन करके और परिपक्व होकर के जन्म लेता है। वो चित्र उतरा गया उसी समय उतरा कि जिस क्षण प्राण छूटे, परंतु आप कहते हैं कि हमारा चित्र हो इंग्लार्ज करवाना है बढ़िया उसका, तो फिर उसका रंग भर करके ठीक बनाकर आपको देते हैं, लीजिए साहब। ऐसे ही अंतकाल के चिंतन के अनुसार वो गर्भ में जाता है, वहां वो रंग भरे जाते हैं। रंग भरकर समय परिपक्व पूरा होने पर अब निकल आता है, चू चू करते, ये देखिए साहब ये आपका फोटो तैयार है, वैसे जन्म हो जाता है। अब कहते हैं वो कुत्ते में क्यों पकड़ा गया? तो ये रेडियो के द्वारा जो शब्द है ये फेंका जाता है, तो वो रेडियो में पकड़ा जाता है मशीन में। अब शब्द लखनऊ से फेंका गया कि दिल्ली से अथवा विदेशों से आया, तो जितने भी स्टेशन होते हैं उनमें शब्द की गति होती है, उसके वो मशीन में अंक रहते 200, 400, 600, 800 ऐसे अंक रहते हैं। उसका तात्पर्य भाई अमुक स्टेशन से जो शब्द फेंका जाए वो इतनी गति से फेंका गया, 400 समझो 400 गति से, तो वो शब्द होता है चलता बड़ी तेजी से, तो वो शब्द सब विश्व में चक्कर लगाता है, वो लगाते हुए सबके साथ स्पर्श करता है, परंतु जहां उसका कांटा मिला हुआ है वहां वो शब्द पकड़ा जाता है, बोल जाता है, और वो कांटा ठीक नहीं होता तो वहां शब्द चक्कर लगाते हुए भी वो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ चला जाता है। तो वो सजातीयता जिस गति से शब्द फेंका गया उस गति के अंकों पर कांटा होने से उसमें पकड़ा जाता है। ऐसे ही अंतकाल में जिसका स्मरण करता हुआ ये प्राणी शरीर छोड़ता है, उसकी सजातीयता जहां है जिस पुरुष में है उसमें वो पकड़ा जाएगा। आपके हमारे यहां यूं स्पर्श भी हो जाए वो पकड़ा नहीं जाएगा, विजातीयता है ना। रेडियो का शब्द तो सब जगह घूमता है और एक ही साथ में कई स्टेशनों में आवाज हो रही, कहीं गाना हो रहा है, कहीं तो व्याख्यान हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, और वो शब्द सब जगह ही शब्द आता है, परंतु सजातीयता होती है वहां पकड़ा जाता है, विजातीयता में नहीं। ऐसे ही अंतकाल के चिंतन के अनुसार जहां जाति मिलती है, संबंध उसका मिलता है, एकता मिलती है, वहां वो शब्द पकड़ा जाता है। तो वो जीव वहां पकड़ा जाता है, फिर अगले जन्म लेता है। अब उसमें विचार किया जाए कि भाई कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। हमने यहां पाप किया, हमने यहां पुण्य किया, किसी मनुष्य की हत्या कर दी तो यहां कर दी, इस शरीर से कर दी, और किसी का हित किया, उपकार किया, सेवा करी तो इस शरीर से, यहां के पदार्थों से कर दी, और ये पदार्थ भी छूट जाते हैं और शरीर भी छूट जाता है, और वो फल फिर कैसे मिलता है? अगर मिलना चाहिए तो इन हाथों से हमने हत्या की, इन्हीं हाथों को दंड मिलना चाहिए, और ये तो मर गए, खाक हो गई यहीं, अब दंड किसको मिलेगा? इसमें जरा सोचने की बात है भाई, कर्म करते हम इस शरीर से, इससे, और फलभागी हम होते हैं अगाड़ी जा करके, ये सही रहता ही नहीं, तो कैसे? इसमें एक बात बताऊं आपको, एक कोई भाई मोटर चला रहा है, ड्राइवर है, और गलती हो गई और किसी मनुष्य की हत्या हो गई, बड़े जोर से मोटर जा रही थी, नीचे आ गया, पिसा गया, मर गया। उस मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, वो तो मोटर से पिस गया, मर गया, परंतु दंड होगा, वो दंड होगा, वो मोटर को नहीं छुएगा, दंड मोटर के संबंध से होगा, मोटर के नंबर लिए जाएंगे, कहां की है, कैसी है, मालिक कौन है, ड्राइवर कौन है, ये सब कुछ होगा। परंतु अगर फांसी दी जाएगी अथवा कारागार दिया जाएगा तो वो मोटर को नहीं छुएगा, वो ड्राइवर को ही होगा। अब कहते हैं भाई ड्राइवर को हो, ये अगर कायदा है तो एक फुटपाथ पर ड्राइवर खड़ा था उस घटना के समय, तो क्या उसको होगा दंड? तो ड्राइवर को होना चाहिए ना, वो भी ड्राइवर है। कि ना ना, वो तो मोटर में था नहीं, वो अलग है, उसको नहीं होता। अच्छा मोटर वाले को होता है, हाँ। अच्छा ड्राइवर के पास ही एक दूसरा ड्राइवर बैठा है, वो तो मोटर नहीं है, उसको दंड होगा? कितना? उसको भी नहीं होगा, क्योंकि मोटर में स्थित है, ड्राइवर भी है ये। कहते ये चला नहीं रहा था मोटर को, जो मोटर को चलाने वाला है उसको दंड होगा। ऐसे ही इस शरीर के द्वारा किसी की हत्या कर दी, पाप किया, चोरी करी, महान अपवित्र चीजों का सेवन किया, अंडे मांस आदि खाए, वो इसी शरीर में रह गए, तो फिर दंड किसको होगा? कि जो इस शरीर का संचालक ड्राइवर है, इस शरीर का मैं मालिक करता है ना, मैंपन, जो मैंपन करता है और जो सुख लेता है उसको दंड भोगना पड़ेगा। हत्या करता है, निषिद्ध चीजों का सेवन करता है, तो जो सेवन करने वाला है उसको दंड होगा। ये शरीर तो कोठरी की तरह है, मोटर की तरह है, रहने की जगह है, ये शरीर मैं नहीं हूं। हरेक भाई शरीर को मेरा कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हाथ मैं हूं, ऐसा नहीं कहते, हाथ मेरा, पांव मैं हूं नहीं कहता, पांव मेरा, आंख कान नाक जीभ ये मेरा मेरा कहता है, सीना मेरा, पेट मेरा, पीठ मेरी, गर्दन मेरी, मस्तक मेरा, ऐसा नहीं कि मस्तक में, गर्दन में, सीना में, हाथ में, ऐसा नहीं कहता। तो मेरा कहने वाला होता है वो मैं से अलग होता है, तो शरीर में रहता है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, भूल से कह देता कि ये मैं। तो भाई एक एक अंग तो मैं नहीं, फिर पूरा मिला हुआ मैं कैसे? शेर भर चावल हो, उनका एक एक दाना तो है चावल, और जब शेर भर इकट्ठे हो जाए तो हो जाए गेहूं, हो जाएगा? नहीं हो सकता। ऐसे ये हाथ है, ये पांव है, ये जांघ है, ये पेट है, ये सीना है, ये पीठ है, ये हड्डी है, ये मांस है, ये चर्बी है, ये चमड़ा है, ये आते हैं, ये भेजा है, ये हड्डी आदि है, ये तो सब अलग अलग, और मिट्टी की चीजें सब मिलकर के मैं, ये कैसे हुआ? ये तो सब मेरी और सब मिला हुआ मैं। भाई सब मेरी मेरी मिलकर के फिर मैं कैसे बना? तो ये क्या है? ये भूल से कहता है। वास्तव में शरीर यहां पड़ा रहता है और मैं कहने वाला चल देता है। वो जो इसको संचालन करने वाला है उसको दंड भोगना पड़ता है। अब ध्यान देना है, कर्ता और भोक्ता, जो कर्म करता है वही कर्म का भोक्ता बनता है। तो अब कर्ता और भोक्ता क्या चीज है? कि जैसे मोटर है, उस मोटर में 5, 7, 10, 20, 50 आदमी बैठते हैं, लारी है बड़ी, तो 50 आदमियों की लारी चलती है, वे जहां जाकर ठहरते हैं, भैया कैसे आए? कहते लारी में आए। कौन लाएगा? लारी ले आई, मोटर ले आ ले जाती है हमें, ऐसा भी कहते हैं। अरे लारी अगर ले जाए तो ड्राइवर को मत बैठाओ और बैठ जाओ अगर लारी ले जाती हो तो। कहते नहीं ले जा सकती। तो कौन ले जाता है? ड्राइवर ले जाता है। तो 50 आदमी यहां बैठ जाए, अगर ड्राइवर को बैठा दें, आप ले जाइए सर, हमें ले जा सकता है? एक को भी नहीं ले जा सकता। तो ले जाने की क्रिया ना केवल ड्राइवर कर सकता है, ना केवल लारी, और दोनों मिलते हैं तब क्रिया होती है। संचालक होता है तब यंत्र चलता है, और उसका चालक अगर न हो तो यंत्र कैसे चले? ऐसे ये शरीर स्थूल है, ये काम करता है, परंतु इसके भीतर जीवात्मा इसका संचालन करता है, तब इसके कार्य होते हैं। और फिर यंत्रों के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकता, और उसके बिना ये भी कुछ नहीं कर सकता, तो दोनों के संयोग से क्रिया होती है, और क्रिया संयोग से होती है, उस क्रिया का फल भी संयोग के कारण ही भोगना पड़ता। परंतु क्रिया के करने में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और भोगने में जीवात्मा की प्रधानता होती है। मोटर द्वारा मनुष्य की हत्या हुई, उसमें मोटर की मुख्यता रही उसके छूने में, मारने में, मसल डालने में, परंतु दंड भोगने में ड्राइवर की मुख्यता रही, और मरा ड्राइवर के संयोग से, और दंड भोगा है मोटर के संयोग से, दोनों में संयोग दोनों का रहा, परंतु भोगता को भोगना पड़ता है, इसमें रहता है उसको। इस वास्ते यहां कर्म करते हैं, पाप करते हैं, धन संग्रह करते हैं, अन्याय पूर्वक, पाप पूर्वक, धोखा देकर, झूठ कपट करके, बेईमानी से धन इकट्ठा करते हैं, वो धन तो यहां ही रह जाता है, और वो झूठ कपट जालसाजी बेईमानी वो भीतर संग्रहित होती है, और मरते हैं तो वो यहां नहीं रहती है, वो साथ चलती है। धन कोटि एक साथ चलेगा नहीं, और जो खराब भाव बने उनमें से कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, उसका महान भयंकर दंड अगर ही होगा। बाहर की यहां रहने वाली चीजों के लिए साथ में चलने वाले भाव को बिगाड़ लिया और वो कहलाता है कि बुद्धिमान है, बड़ा समझदार चलता पुरजा, कितना काम कर लिया जी, थोड़े दिनों में लखपति बन गया, बहुत बड़ा काम किया। कहते साथ में चलने की पूंजी, कहते महान बिगाड़ ली। अगर ये बुद्धिमानी है तो भाई अब क्या कहें, शब्द क्या कहें उनके लिए। यही अगर बुद्धिमानी है तो मूर्खता किसका नाम धरे। सब चीजें यहां रहने वाली और यहां रहने वाली चीजों के लिए बिगाड़ ली, साथ में चलने वाली चीजें। ऐसा अंधेर हमारे यहां भारतवर्ष में नहीं था। शिविदधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राजा शिवि ने अपने शरीर को काट करके दे दिया शरणागति की रक्षा के लिए। दधीचि ऋषि ने प्राण छोड़ दिए, हड्डियां दे दी। हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया, बाहर की सामग्री दे दी, परंतु भीतर के भावों का नाश नहीं होने दिया। सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, सब भावों को बिगड़ने नहीं दिया। तो भाई नष्ट होने वाली चीज ही गई यहां से, जो साथ में नहीं रहती थी। राज्य साथ में नहीं रहता, उसी को छोड़कर रत्न ले लिया। साथ में चलने वाली बढ़िया पूंजी संग्रहित कर ली। वे चतुर रहे, वे समझदार रहे। जो छूटने वाली चीज को ही छोड़ दिया, परंतु रहने वाली चीज का नाश नहीं होने दिया। हम परवाह नहीं करते हैं भीतर की चीजों के बिगड़ने की, परंतु बाहर का हमारा ये इज्जत आबरू पोजीशन कुछ भी कह दो, ये हमारी न बिगड़े, ये हमारी ठीक बनी रहे। भीतर से चाहे कितने ही काले रहे, हम नित्य कर्म की करें, भजन करें, साधु कहलावें, अच्छे कहलावें, समाज में लोग हमें अच्छा समझे, और हम कैसे हैं, ये कैसे हैं? ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, समाज में अच्छा रहना चाहिए। भाई व्यक्ति अगर बिगड़ेगा तो समाज किसका नाम है, सुधरेगा क्या? हम ऊपर से अपने को अच्छा दिखावें, आप ऊपर से अच्छा दिखावें, तो समाज दिखावटी दिखावटी अच्छा बन रहा, समाज तो बिगड़ गया पूरा का पूरा, क्या सुधरा रहा? और भीतर से एक भी अगर सुधर गया तो भाई 2.5 अरब में से एक तो सुधरा। और भीतर का भाव में सुधार कर और बाहर के सुधार की बड़ी बड़ी बातें बनाई, व्याख्यान दिया, सुना दिया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा, सर्टिफिकेट मिल गया, क्या हुआ? तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्य भी परवीन। चतुर वह है जो भजन कर ले, अपने भाव को शुद्ध बना ले, भीतर की प्रकृति निर्मल बना ले, आदत अच्छी कर ले, वो चतुर है, होशियार है, समझदार है। और भीतर के भावों को गंदा कर ले और बाहर से वाह वाह ले ले, धन भी संग्रह कर ले, तो के पर धन और पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। तो हम कितनी चतुराई करें, बिना कुछ खर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना किसी को कुछ वस्तु दिए रुपया नहीं ले सकते, वेश्या मुफ्त में ले लेती है। मन भी किसी का खींचेंगे तो भाई कोई ख्याल खेल तमाशा दिखाएंगे, अथवा गाना बजाना, अथवा व्याख्यान में कुछ मेहनत करके और लोगों से वाह वाह लेंगे, बेशक को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, और ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करेंगे तो बेशक के समान हो जाएंगे, और क्या होगा। इसमें इज्जत नहीं है, वास्तविक इज्जत है जो भीतर से हम शुद्ध बन जाएं। समाज में चाहे लोग हमें अच्छा न माने, न जाने, न कहे, परंतु हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो चित्त में शांति, प्रसन्नता, आनंद, हर्षद रहेगा। और समाज अच्छा न कहे ये समाज के हाथ की बात नहीं, सच्ची चीज होती है तो भैया छिपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है। संतों ने वाणी में कहा है, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। कस्तूरी की सुगंधी को कोई सौगंध दिला दे कि सौगंध है तो घुमता ना, बार डिबिया खोलते ही फैल जाती, क्या मना करने से मानती है। ऐसे भाई अपने भाव होते हैं, थोड़ा दिन दबा सकते हैं परंतु वे दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले इसको विशेष पहचान लेते हैं, विशेष समझ में आ जाती है बातें। तो भाइयों, गति अगर शुभ बनाना है, अगाड़ी अच्छी गति में जाना है, तो हमें अपना भाव शुद्ध बनाना होगा। हमारी आदत, हमारे स्वभाव, भाव अच्छे बन गए तो नीची गति में हम जा ही नहीं सकते। भैया जिसके दया है, क्षमा है, शांति है, प्रसन्नता है, ऐसे अगर बिच्छू बनाया जाए, सांप बनाया जाए, तो वो काम ही नहीं कर सकेगा, वहां काम कैसे करेगा, आदत ही नहीं है। वो शांत सौम्य मूर्ति है। जो आदमी दूसरे को दुख देता है, बिना कारण कष्ट देता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर देता है, ऐसे पुरुष ही अधोगति में जाते हैं। अपना चुपचाप रहना, अच्छा अपना समाज में दिखाना, और मौका पड़े तो आंख बचा करके लूट लेना, ऐसा स्वभाव बना लेता है भाई, बिड़ाल बनता है, बिल्ली बनता है, बिल्ली चुपचाप बैठे म्याऊ म्याऊ करती रहे, आंखें मीचती रहे, और जहां देखा कि तरह तो मलाई है, फट छापा मारती, क्योंकि आदत है ना, ये आदत सीखी गई है मनुष्य जन्म में, स्वभाव बदला है उसने मानव जन्म में, और भगवान ने चोली बदल दी। भाई स्वभाव तुमने बना लिया तो चोली हम पहना देते, जाओ। नाटक में भी स्वांग उसी को दिया जाता है जो स्वांग ठीक भर सके, उसके अनुसार नृत्य कर सके। हेडमास्टर या भेड़ बकरी चराने वाले को नहीं बनाया जाता, जो सबको पढ़ा सकता है, योग्यता वाले को वो स्थान मिलता है। ऐसे ही मनुष्य अपनी अच्छी योग्यता, सौम्यपन, शांत भाव, शुद्ध भाव बना लेता है, उसकी अधोगति हो नहीं सकती, क्योंकि भाव हर समय शुद्ध है, अंतकाल में भी तो शुद्ध ही रहेंगे। और अंतकाल के अनुसार गति होगी। कहते हैं कि हम तो इतिहासों में सुनते हैं, भागवत में एक कथा आती है, भरत मुनि थे, भारतवर्ष के बड़े राजा, वे सब छोड़कर जंगल में जाकर और तपस्या में लग जाते हैं, भजन स्मरण में, तपस्या में। एक दिन वे स्नान करने को जब जाते हैं गंडकी नदी पर, तो वहां गर्भवती हरिणी जल पीने के लिए आती है, और वो ज्यों ही जल पीने लगी तो ही पीछे से सिंह की गर्जना हुई। हरिणी बिचारी डर गई, भयभीत हो गई, बाघ आ रहा है पीछे, वो भागी तो नदी के पानी का एक खाल पड़ा हुआ, उसके ऊपर करके जब छलांग मारती है उसका गर्भ गिर जाता है। भरत मुनि वहां स्नान कर रहे थे और वो हरिणी अगाड़ी जाकर के गिर जाती है, मर जाती है। देखा कि बच्चा बिना माता का हो गया, अब इसकी रक्षा कौन करे, दया आ गई। नदी में धोकर साफ करके ले लिया साथ में, उस जल कुछ चीज पानी में मिलाकर घोट कर देते उसको घास खाना सिखा दिया और अपने पास रखा। हरदम उसका पालन करने लगे, उसमें मोह हो गया, जैसे माँ बाप का अपने बच्चे में होता है वैसा ही। अब वो भजन करते हैं, वो पास में खेलता है, खुजाल करता है, आनंद आता है, खुशी होती है, फुदकता है, देख देख बड़े प्रसन्न होते हैं। कई महीने हो गए, बड़ा हो गया, सींग मारता है, कूदता है, बाबा जी खुश हो रहे हैं। एक दिन बहुत से हरिण आते हैं, उनको देखकर भाग गया, उनमें मिल गया। अब वो उसके लिए व्याकुल हो गए, दिन भर घूमते रहे, मेरा हरिण कहाँ गया, हरिण कहाँ गया। रात्रि होती है, चंद्रोदय होता है, चंद्रमा को कहते हैं तुम सस्लांचन है, मृगांक तेरा नाम है, मालूम होता है तू मेरे मृग को ले गया। अब न जानने न रहने न होने वाली बातें कहने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। उसी हरिण के चिंतन में मरने से मर करके हरिण बने। तो वो हरिण कैसे बन गए, कति तो कायदा ठीक ही तो है, अंतकाल में हरिण में वृत्ति रही, उसका चिंतन करते करते मरे, वही हरिण में हरिणी में जाकर जन्म लेकर वो फोटो आ गया थी, लीजिए सब हरिण बन गए। कहते स्वभाव जिसका शुद्ध बन जाता है वो नीची गति में जा नहीं सकता, ये जो कह रहे थे, क्या भरत का स्वभाव शुद्ध नहीं बना था, राज्य का त्याग कर दिया, तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, भजन कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, ऐसी तपस्या करने पर भी हरिण बन जाते, तो अधोगति हो गई कि ना ना जरा ध्यान दें। भागवत का वहां लेख पढ़े, हरिण के जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की बात याद है और वहां हरी घास न खा करके और सूखे पत्ते खाते हैं, होश है वहां, और अपनी माता के साथ में नहीं रहे, संग भीता उदास होते, कहीं संग हो जाएगा मोह हो जाएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा। हरिण के जन्म में इतनी सावधानी जो अपने मनुष्यों को भी आपको और मेरे को नहीं प्रतीत होती, तो अधोगति कहां हुई। सोनी चाहे हरिण की मिल जाए वो कानून के अनुसार, अंत में उसी का स्मरण रहा, परंतु अपनी की हुई तपस्या के प्रभाव से वहां भी पूरा ज्ञान है, पर वहां से मर करके फिर जन्मते हैं ब्राह्मण के घर, जो भरत होते हैं उसका नाम जड़ भरत होता है। रघुगण को ज्ञान दिया है, बहुत से भाई जानते ही होंगे, भागवत की प्रसिद्ध कथा है। तो भाई किया हुआ भजन स्मरण तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, और भाई वो कानून भी व्यर्थ नहीं जाता है। इतने बड़े त्यागी तपस्वी रहे, परंतु अंतकाल में हरिण का स्मरण है तो हरिण तो बनना ही पड़ा। तो हमें कर्म करते हुए भी सावधान रहना है और चिंतन भी प्रभु का करते रहना है। जैसा जैसा चिंतन करते हैं वैसी वैसी हमारी गति होती है। इस वास्ते मनुष्य के लिए ये बड़ी खास उचित बात है, और जोनियों में कर्म और चिंतन को आप बदल नहीं सकते, पशु पक्षी को शिक्षा नहीं दे सकते, उनके स्वभाव का आप परिवर्तन करके आध्यात्मिक मार्ग में नहीं ला सकते, उनके स्वभाव के अनुसार उनको शिक्षा दे सकते, परंतु हितानित किस में है, पुनर्जन्म का हेतु क्या होगा, तुम ऐसे चिंतन करो, ये शिक्षा नहीं दे सकते। कहीं कहीं ऐसी बात भी आती है तो वो तो भरत मुनि की तरह हरिण जन्म में भी ज्ञान है, इसलिए जाम्बवान है, हनुमान जी है, गीत है, काकभुसुंडी है, आदि आदि जितने हो गए हैं उनका कारण भरत मुनि की तरह है, वहां उस योनियों में अधिकार नहीं है, ये अधिकार इस मानव जन्म में है। अभी अगर हमने अपनी आदत बिगाड़ ली, स्वभाव हमने अशुद्ध बना लिया, तो भाई अधोगति में फिर संदेह नहीं। विश्वास से कहा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। आपके हमारे द्वारा दूसरे का किसी का अहित न हो जाए, अनिष्ट न हो जाए। ये दूसरे का अनिष्ट दिखता है, वास्तव में हमारा महान अनिष्ट होता है। औरों की हम सेवा करते हैं, सुख पहुंचाते हैं, प्रतीत होता है कि दूसरों को दुख दे सुख दे रहे हैं, नहीं नहीं हमारे सुख की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा दोष अथवा पाप है ही नहीं जो अपने को बिना दोषी बनाए दूसरे को दुख दे सके। चोरी करते हैं तो चोर स्वयं बनकर करते हैं, वो चोरी में माल हाथ लगे न लगे हाथ की बात नहीं, पर मैं चोर हूं ये तो मिट ही नहीं सकता, अपने में तो चोरपने का भाव आ ही गया। अपने बिगाड़ के बिना दूसरे का बिगाड़ कर नहीं सकता, ऐसे दूसरे का सुधार करता है, पहले अपना सुधार होता है। अच्छा पुरुष बनता है तब अच्छे आचरण होते हैं।
श्री जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।